خواتین و حضرات، برصغیر جنوبی ایشیا کی نوآبادیاتی نظام سے آزادی اور قیام پاکستان کے 75 برس مکمل ہونے پر وائس آف امریکہ نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کے ہر ممکنہ شعبہ حیات، علوم و فنون، سیاست و سماج، فکر و فلسفہ، ثقافت اور کھیل، جمہوری سفر وغیرہ ہم سے متعلق سامعین کے لیے دلچسپ اور معلومات افزا پوڈکاسٹ تیار کیے جائیں۔ پوڈکاسٹ کے سلسلے کا آغاز ہم پاکستان میں فن مصوری، سنگ تراشی، خطاطی کے 75 سالہ جائزے اور اس وقت کی صورت احوال کے تذکرے سے کر رہے ہیں۔ ہماری معزز مہمان ہیں پروفیسر سلیمہ ہاشمی اور پروفیسر نازش عطا اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حارث خلیق۔ بہت بہت خوش آمدید سلیمہ آپا آپ کو، اور نازش آپا آپ کو بھی۔ اب میں مزید پروفیسر کا استعمال نہیں کر سکتا آپ کے نام کے ساتھ بار بار،
کوئی ضرورت نہیں،
اس کی مجھے عادت بھی نہیں ہے، اور وہ بہت ہی ایک پرتکلف سا ہو جائے گا ماحول۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم ذرا کھل کے گفتگو کریں، کچھ واقعات بھی جو آپ، کیونکہ آپ نے بہت بڑے بڑے مصوروں کو بہت نزدیک سے بھی دیکھا ہے۔ تو سلیمہ آپا، آپ کی اجازت سے میں اگر نازش عطا اللہ صاحبہ سے شروع کروں، تو نازش آپا یہ بتائیے کہ یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، پھر ہم ذرا فلیش بیک کرتے ہیں، اس وقت کی جو آرٹ کی صورتحال ہے پاکستان میں، خاص طور پہ پاکستان میں اور خطے میں عمومی طور پر، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر دور میرے لیے، میں بہت بڑی آپٹیمسٹ ہوں، میرے لیے تو ہر دور کوئی نہ کوئی نئی بات کہتا ہے اور اہم ہوتا ہے۔ اور جو اس وقت کا دور جو ہے نا، اس کو میں کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ ڈیموکریٹک سپیس شاید کبھی بھی پہلے نہیں ہوا ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز نظر آپ کو آتی ہے، ایک بہت ٹریڈیشنل قسم کے کام بھی جو ہیں وہ اتنے ہی مقبول ہیں جتنے بہت کنٹمپری کام جو ہیں وہ بھی ویسے ہی مقبول ہیں۔ اور اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے، ہر شعبے سے، فلم ہو، ٹیکنالوجی ہو، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہوں، بہت ساری جسے ہم کہتے ہیں نا کراس انفلوئنسز ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹیکسٹائل میں کام کر رہا ہے، وہ بھی ایک آرٹ کا حصہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک پینٹنگ آئل سے پینٹ کر رہا ہے، تو وہ اتنی ہی اس کی اہمیت ہے کہ اگر وہ کاغذ کے اوپر پینٹ کر رہا ہو تو۔ اور یہ، اور یا کوئی پرنٹ میکنگ کر رہا ہو یا کوئی مجسمہ سازی کر رہا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ایسا سپیس بنا ہوا ہے جہاں پہ یہ سب جو ہیں اس وقت کو ایگزسٹ کرتے ہیں۔
تو اس میں کوئی ٹیکنالوجی کا کردار یا سوشل میڈیا کا کردار بھی ہے؟
بالکل ہے، بالکل ہے، اور وہ بہت ہی وہ دلچسپ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے لوگ، جو ہمارے جنریشن کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی ٹریڈیشنل طریقے سے چیزیں سیکھی، ہم بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ میں بھی کہہ رہی ہوں کہ میں ایک ڈیجیٹل پرنٹ بناؤں گی، جبکہ میں ایک ٹریڈیشنل پرنٹ میکر ہوں جو کہ ایچنگ اور ویسے دوسرے مٹیریل سے بناتی ہے، ایک بہت ہی ٹریڈیشنل طریقے سے، مگر میں نے ڈیجیٹل پرنٹ بھی بنایا۔
تو آپ سیاست سے جتنی ناخوش ہیں، آرٹ سین سے اتنی ہی خوش نظر آتی
ہیں؟ بالکل، میں بہت خوش ہوں۔
اچھا، میں اگر سلیمہ آپا کی طرف جاؤں، تھوڑا سا ہمیں ماضی میں لے جائیے اور پاکستان بننے کے بعد جو یعنی صورتحال تھی، ظاہر ہے کہ ایک ہر جب کوئی نیا ملک جنم لیتا ہے اور خاص طور پر نو آبادیاتی نظام کے بعد، تو اس میں ایک شناخت کا ایک بحران بھی ہوتا ہے، بحران کہہ لیں یا شناخت کی تلاش کہہ لیں۔ تو اس وقت کا، 50s کا، 47 کے بعد پاکستان کا کیا آرٹ سین تھا؟
دیکھیں،
اور میری خواہش ہوگی کہ لاہور کے باہر بھی جو ہو رہا تھا اس پہ بھی گفتگو کریں۔
دیکھیں، بہت تضاد تھا جس طرح کے معاشرے میں تھا۔ تو ایک طرف تو لاہور شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں عبد الرحمان چغتائی جو تھے وہ استاد مانے جاتے تھے، اور بلکہ ریڈیو پاکستان کا پہلا لوگو بھی انہوں نے بنایا، اور انہوں نے ان کی جن محفلوں میں رہتے تھے ان میں شعرا تھے، ان میں جو انٹلیکچوئلس تھے، روشن خیال لوگ بھی تھے، وہ ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور انہی کی کتابوں کی وہ تصویریں بھی بناتے تھے، مرقع چغتائی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف جو نوجوان لوگ تھے، آرٹسٹ تھے، اور ان میں رائٹرز بھی تھے، ان میں شعرا بھی تھے، ان کا خیال تھا کہ پیچھے دیکھنا جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ایک نیا ملک ہے اور ہم نے ایک نیا، نئے احساس سے अपना काम करना है। और मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं गुफ्तगू कर रही थी इंतज़ार हुसैन साहब के साथ
जी,
तो उन्होंने बताया था कि भी हम टी हाउस में बैठा करते थे, कॉफ़ी हाउस में बैठे थे, और रोज़ शाम को हमारी महफिलें होती थी जिनमें लिखने वाले भी होते थे, जिनमें मुसव्विर भी होते थे, जिनमें किस्म किस्म के लोग थे, और बड़ी बहस होती थी। और हम लोग तो ने तो तय कर लिया था कि हमारा जो अदब होगा वो एक नया अदब होगा, उसका माजी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और इनमें जो थे ऐसे लोग थे जिस तरह के अनवर जलाल शमसा, और जो लिखते भी थे लेकिन वो तस्वीरें भी बनाते थे और उनकी तस्वीरें बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट क्यूबिस्ट होती थी। शाकिर अली जो कि नए नए आए थे लंदन से पाकिस्तान, वो लाहौर आए नौकरी की तलाश में, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में उनको नौकरी मिल गई और वो भी इनमें शामिल होते थे। उनके बारे में इंतज़ार साहब ने कहा कि वो खामोश बैठे रहते थे, कभी कुछ कहते ही नहीं थे। तो और वो आए थे अपना नासिर साहब के साथ,
नासिर काजमी
के साथ। तो इंतज़ार साहब ने कहा, मैंने पूछा, नासिर भाई ये आदमी बोलता ही नहीं है तो तस्वीर क्या बनाता होगा। तो नासिर काजमी ने कहा, नहीं आप इंतज़ार कीजिए, आप देखें कैसे बोलेगा। और कहने लगे, वाकई कुछ दिनों में शाकिर अली ने बात करनी शुरू कर दी, लेकिन जबान पे नहीं, अपनी तस्वीरों के ज़रिए उनका तहलका मच गया। और शाकिर साहब की जो पहली एक्सिबिशन हुई लाहौर शहर में, उसमें CID आ गई।
और ये अंदाजन किस सन की बात
होगी? देखिए वो तो हर चीज़ जो है उस पर गौर CID ही करती थी, वो अदब क्यों ना हो, शायरी क्यों ना हो, और तस्वीरें जो उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आई क्योंकि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट थी। तो शाकिर साहब परेशान हुए क्योंकि ज़रा वो थोड़े से खामोश भी थे और उनकी समझ में नहीं आया, नए नए लाहौर आए थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या मसला है। तो उन्होंने शाकिर साहब से कहा कि हमें शक ये है कि आपके काम में कुछ पैगामात दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, किस किस्म के? तो उन्होंने कहा, जी हमारा ख्याल है कि आपके काम में मार्क्सिस्ट फलसफा जो है वो आम करने की कोशिश हमें नज़र आती है। तो शाकिर साहब बेचारे, जिन्होंने मेरे ख्याल मार्क्सिस्ट, तो खैर उससे दिलचस्पी तो उनको थी क्योंकि उससे पहले वो चेकोस्लोवाकिया रह के आए थे
जी।
तो लेकिन उनका तो कभी ख्याल में नहीं आया कि उनकी जो तस्वीर जो क्यूबिज़म है उसमें इश्तराकियत जो है वो भरी पड़ी है, जो कि उनकी नज़र CID को नज़र आ रही थी। तो इस किस्म के मसाइल थे। और उस ज़माने में जिस तरह की सियासी हालात थे, तो इनमें से कुछ आर्टिस्ट मसलन अली इमाम साहब जो थे, उनको जेल की भी काटनी पड़ी। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ कैंप्स थे, एक रिवायती और दूसरा बिल्कुल रिबेलियस इनकलाबी आर्टिस्ट। और ये 50s का जो दौर था उसमें ये आपको ये दोनों अंसर जो है नज़र आते हैं। तो इर्तका तो उसके बाद में कई मंजिलें गुजरी और हर दौर में आपको उस दौर की सियासत और जो समाजी हालात थे वो नज़र आते हैं। और ये भी आपको पता चलता है कि भाई उसकी वजह से फाइन आर्ट में क्या क्या रोजाना।
अच्छा, इससे पहले कि मैं नाजिश साहिबा की तरफ आऊँ, नाजिश आपा की, एक बहुत दिलचस्प मुझे बात याद है। वो याद इस तरह से है कि पुराने अखबारात की अगर आप फाइलें देखें तो उस ज़माने में तो शेर और अदब ओढ़ना बिछौना था लोगों का, और सहाफ़त, अदब और मुसव्वरी जैसे आपने खुद फरमाया, उनका आपस में बहुत एक गहरा रब था जो बदकिस्मती से अब हमें कम कम नज़र आता है, शायद दोबारा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो एक आपके वालिद फैज़ अहमद फैज़ साहब की दावत की थी शाकिर अली साहब ने, तो वो उसका ज़रा किस्सा सुनाइए, क्योंकि वो किसी अखबार में भी छपा था।
बिल्कुल छपा था। वो किस्सा कुछ यूँ हुआ कि भाई हमारे वालिद फैज़ अहमद फैज़ वापस आए विलायत से, लाहौर पहुँचे तो शाकिर अली ने कहा, जो उनकी था बहुत दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा भी दावत करूँगा फैज़ तुम्हारी। हालांकि शाकिर अली जो है वो दावत के ज़्यादा कायल नहीं थे, उनके बारे में मशहूर था कि अगर कोई मेहमान आता था तो बावर्ची को आवाज़ दे देते कि भाई उसमें ज़रा पानी और डाल देना दाल में। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने जी कड़ा करके और दोस्तों को बुलाया जिनमें दानिश्वर और मुसव्विर और सब दोस्त पहुँचे, और उन्होंने मुर्गा पकाया, मुर्गे कई मुर्गे पके, और तहलका मच गया कि शाकिर अली के यहाँ आज जो है बहुत मुर्गे पके। तो शाकिर साहब का घर नीचे था और ऊपर लड़कों का हॉस्टल था, तो वहाँ भी मेरे ख्याल में खुशबू महक जो है ऊपर तक पहुँच गई
पहुँच गई।
बहरहाल जब दस्तरखान बिछा तो पता चला कि मुर्गे गायब, और शाकिर अली बहुत सटपटाए कि भाई एक तो इतनी मुसीबत से उनने मुर्गे बनाए और मुर्गे पर गायब है, तो
और
दूसरे
देसी मुर्गा
देसी मुर्गे यकीनन। तो उसके बाद अगले दिन अखबार में खबर आ गई, क्योंकि मेरे ख्याल में हमीद अख्तर भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने खबर दे दी अखबार में कि भाई शाकिर अली ने दावत की फैज़ अहमद फैज़ की, तो उसमें मुर्गे गायब हो गए। कई साल बाद वो जो हॉस्टल में लड़के थे वो उस्ताद बने, हमारे कॉलीग्स बने, तो फिर उन्होंने आखिर राज जो था फाश किया और कहा कि भाई हम ही लोग थे, क्योंकि बहुत उसमें इतनी चहमगोइयाँ हुई थी कि भाई कौन आया, कोई बाहर से कोई कुत्ता आके उसने मुंह डाल दिया उसमें, या बावर्ची खुद जो था बेईमान हो गया, कुछ नहीं पता चला, ऐसी सफाई से वो मुर्गे गायब हुए। तो इतने साल बाद आदिल और दबीर हमारे कॉलीग्स, उन्होंने फिर बताया कि भाई वो हम ही लोग थे और हमने क्या मुर्गे उड़ाए उस दिन। एक तो ये
बहुत
शाकिर के
दिलचस्प। अच्छा इससे मुझे ख्याल आया नाज़िश आपा कि सेंसरशिप की बात हुई, सीआईडी के रोल की बात हुई, तो ये आप इसे जो, और अभी हमने अभी देखा, मैं आज फिर अदीला सुलेमान का, अभी चंद दो एक साल ही हुए हैं जब अदीला सुलेमान का आर्ट इंस्टॉलेशन कराची में उखाड़ दिया गया, तो सेंसरशिप से आप लोगों ने कैसे डील किया इन 40-50 बल्कि 70 बरसों में, अगर देखें आर्ट आर्टिस्ट्स ने कैसे डील किया, क्योंकि अदीबों का तो हमें थोड़ा बहुत इल्म है, लेकिन आर्टिस्ट कैसे इससे डील करते रहे?
देखिए इसको दो तरह से आप देख सकते हैं इसे। एक तो ये कि जो हुकूमत के इदारे जो थे, जैसे कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, या जैसे कि यह आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग है यहाँ पे लाहौर में, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल जिसे कहते हैं, यहाँ पे मुझे याद है ज़ियाउल हक के ज़माने में नुमाइशों में से तस्वीरें हटा दी गई हों कि ये आप दिखा ही नहीं सकते, यानी इस हद की सेंसरशिप। और कुछ ऐसी चीज़ें मुझे याद हैं अच्छी तरह से कि हम पढ़ाते थे नेशनल कॉलेज में, और जब एक साल के, जब साल ख़त्म होता है तो एक इम्तहान होता है जैसे डिग्री का इम्तहान जो कहते हैं, और एक नुमाइश होती है। तो कुछ ऐसे लोगों का काम था जिसका हमें इल्म था, हमें मालूम था कि ये काम जो है ख़ास तौर पे अगर न्यूड्स हैं या कोई इस तरह का काम है जो कि ऑब्वियस है कि नज़र आएगा कि ये क्या बना हुआ है, तो वो काम हम बड़ी तरकीब से किसी ऐसी जगह पे उसको लगा देते, एग्जिबिट कर देते थे, और चटखनी भी लगा दी कभी कभी बाहर से कि भाई कोई आके कोई एतराज़ ना करे और बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। क्योंकि पूरा जो ज़ियाउल हक का दौर था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, वो एक इंतहाई मुश्किल दौर था। सड़क के एक पार जमात इस्लामी का राज था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और सड़क के दूसरी तरफ यानी माल रोड की दूसरी तरफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एक छोटा सा जजीरा बना हुआ था जहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे पूरे मुल्क से, गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलूचिस्तान से, सिंध से, इंटीरियर से, पूरे पंजाब से, मतलब हर जगह से उनकी नुमाइंदगी थी। और मैं बात कर रही हूँ एक, जब ये नेशनल कॉलेज बना है तो ये इसकी एक नौइयत थी 1958 से कि भाई ये हर सूबे से रिप्रेजेंटेशन होगी।
लेकिन कॉलेज तो 1875 में नहीं कायम हुआ?
नहीं, वो था मेयो स्कूल ऑफ आर्ट। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट बना 1875 में, अंग्रेज़ों के दौर में, अंग्रेज़ों का पूरा एक वहाँ पे सिलेबस था, एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूशन था, किपलिंग जो रडियार्ड किपलिंग के वालिद जैसे लोग उन वो प्रिंसिपल थे, बराबर में म्यूज़ियम था, म्यूज़ियम के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक था, ये सारी चीज़ें होती रहीं। मगर 1958 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला ये किया कि एक नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए आर्ट, आर्ट डिज़ाइन आर्किटेक्चर का, और वो फिर उससे उसकी नेशनल कॉलेज बना, एनसीए जिसे कहते हैं।
इंडस वैली,
इंडस वैली तो 90 की दहाई,
वो 90 की दहाई
बिल्कुल। तो उतने अरसे, अगर जितने आप शोबे देखें, आप टेलीविजन में चले जाएं, आप कोई फिल्म में चले जाएं, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाएं, ये एक्चुअली नेशनल कॉलेज के जो शागिर्द थे वो अपनी पढ़ाई करके ट्रेन होके वो इन सब शोबों में जाते थे,
जाया करते थे और अब भी जाते हैं, अब भी
नहीं,
जाते
नहीं, अब भी तो, अब तो खैर बहुत ज्यादा है वो।
अगर हम सेंसरशिप का मैं यानी उस पर अगर दोबारा एक बात करूं, जैसे अली इमाम साहिबा का साहब का अली जैसे अली इमाम साहब का जिक्र किया सलीमा आपा ने कि उन्होंने जेल भी काटी, एक आपसे मेरे सवाल ये होगा कि फिर क्या राहें निकाली अपने काम को करते रहने की, क्योंकि ये बहुत अहम होता है कि आप यानी बका बहुत जरूरी है, कायम रहना मुश्किल हालात में, तो क्या किया पाकिस्तान में आर्टिस्ट
तो ये ने? किया मुझे जो लगता है, जो कि कम से कम हमने तो ये किया कि हमें जो कहते हैं ना कि आप कोई और तरीका ढूंढते हैं वही बात कहने का, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि एक मेटाफोरिकल एक आपने एक इमेजरी अब डिवेलप की, ठीक है, और उसके अंदर आप जो है आप बात कर रहे हैं कुछ और आप उसको नुमाया कर रहे हैं किसी और तरीके से, आप समझ गए ना, मगर जो जो शख्स उसको देख रहा है सिंबॉलिक मेटाफर्स में आप उसको वो कर रहे हैं, उससे ये होता है कि फिर जो जो शख्स उसको देखता है
उसकी समझ में ये बात आ जाती है क्या हो रहा है, यानी वो कन्वे कर देता है अपना,
कन्वे करते
हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तजरीदी आर्ट की, बल्कि सलीमा आप आपकी तरफ में आता हूं कि पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा आया, बल्कि मुझे दहाइयां भी अगर आप बताती रहे हैं ना कि किस डेकेड में क्या हुआ, चूंकि सुनने वालों को भी मेरी तरह नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा कि किस दहाई में हम देखते हैं कि एक तजरीदी आर्ट का जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है उसका एक बड़ा उरूज पाकिस्तान में, और हर आदमी हर खातून एक कुछ तजरीद माइल ब तजरीद थे एक ज़माने में, तो वो और फिर अब हम देखते हैं कि उसमें कुछ ज़रा तवाज़ुन पैदा हुआ है, तो वो कौन सा दौर है?
देखें जो पहली दहाई थी और बल्कि 60s तक, ये बहुत हद तक जो बैन अल-अक़वामी दुनिया में जो कुछ हो रहा था उससे लोग मुतासर थे
और रिफ्लेक्ट करते थे,
और बाहर बहुत से लोग बाहर जाके पढ़ रहे थे जिनमें पूरा जिस चीज़ को लाहौर आर्ट सर्कल कहते हैं जो कि हमारे पहले मेमार थे मॉडर्न आर्ट तहरीक के, वो बाहर गए पढ़े वापस आ गए, जिनमें शमज़ा का नाम मैं ले चुकी हूँ, अली इमाम का नाम ले चुकी हूँ, जिनमें शाकिर अली थे, जिनमें वो थे किबरिया थे जो कि जापान गए थे, आप ये मत भूलिएगा कि पाकिस्तान के उस वक्त दो विंग्स थे ईस्ट पाकिस्तान में, बहुत ही ज़बरदस्त तहरीक थी जिसके ज़ैनुल आबिदीन जो थे उनके उस्ताद थे, तो एक मिक्स्ड लॉट था, और आई थिंक अहमद परवेज़ जैसे लोग भी थे, सो ये लोग जो थे ये नुमाया नाम थे। सादिक ऐन को मत भूलिए क्योंकि वो आए थे हिंदुस्तान से, वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे, कैलीग्राफर थे, और बहुत जल्दी वो छा गए क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी थी कि जब सोहरावर्दी ने उनको बाहर भेजा पढ़ने के लिए पेरिस, बल्कि दुनिया देखने के लिए, तो वो फौरी तौर पे उनको लगा कि जैसे उनको बहुत कुछ है कहना है लेकिन उनका कैनवस जो है वो बहुत वसी होना चाहिए, और इत्तफाक से पाकिस्तान की हुकूमत ने भी उनको वो मौके
बिल्कुल,
और उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और PIA और एम्बसीज के लिए मंगला डैम में सबसे बड़ा म्यूरल बिल्कुल, तो ये बहुत तो एक तरह से मैं कहूँगी कि सादिक़ैन ने जो अवाम थी एक अवामी लेवल पे उनको एहसास हुआ कि भी शायद फनकार भी कोई चीज़ होती है, मतलब बसरी फ़नून भी कोई चीज़ होती है, और वो बहुत शोमैन भी थे, और वो जो जिस तरह का काम वो करते थे वो आम फहम था, सो लिहाजा वो लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, तो एक तो वो थे जो कि यूरोप से मुतासिर तो थे
जी।
लेकिन उन्होंने उसको यहाँ के एडियम में भी मिक्स किया, सो जब उन्होंने लाहौर शहर में म्यूज़ियम की छत पेंट की तो शाकिर अली जो कि फ़नी तौर पे बिल्कुल उनको अपोज करते थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये काम जो है वो वाकई बहुत बड़ा काम किया है सादिक़ैन ने, तो शायद मेरे ख़्याल में इन सब लोगों को एहसास था कि वो एक बिरादरी का हिस्सा हैं, और सबकी ज़ुबानें फ़नी ज़ुबानें बिल्कुल एक दूसरे से मिलती नहीं है, उनकी वोकैबलरी उनकी लुगत सब, और उससे फिर अगली जो जनरेशन थी 70s की जनरेशन में फिर आपको आप कंटेम्प्रेरी आर्ट की तरफ आते हो तजरीदी आर्ट से हट के,
ठीक,
उसमें फिर जो नुमाया नाम हैं वो ज़हूर अल-अख़लाक़ हैं, वो शाहिद सज्जाद हैं, जो कि स्कल्प्टर थे, जो कि बिल्कुल ही एक अजूबा चीज़ थी क्योंकि यहाँ पे रिवायती नहीं थी। उन्होंने वहाँ पे मशरक़ी पाकिस्तान में जाके लकड़ी में वहाँ पे काम किया था। सो और जब कराची में उसकी नुमाइश हुई, जो कि इतफ़ाक़ से फैज़ अहमद फैज़ ने उसको इनॉग्रेट किया, तो शहर जो था उसमें तहलका मच गया शहर में कि भाई ये काम भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर ज़िया का दौर आया जिसकी का ज़िक्र नाज़िश कर चुकी हैं, और ये वो ज़माना था जब ख़वातीन मुसव्विरें थी
जी,
उन्होंने आगे
आगे इसको। अब मैं आता हूँ नाज़िश आपा की तरफ कि ये ख़वातीन, चूँकि आप भी ये जो वुमेन्स एक्शन फोरम और आप दोनों ही रहीं, लेकिन ये कि आपका भी ताल्लुक़ रहा और ख़वातीन का जो पूरा एक जो एकदम से हम देखते हैं पार्टिसिपेशन बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा, और बड़ा ही एक रिमार्केबल किस्म का पार्टिसिपेशन है, और माया नाज मुसव्विर ख़वातीन मुसव्विर पैदा हुई, उस पर ज़रा रोशनी डालिए और आपका उनसे क्या ताल्लुक़ रहा वो भी बताइए।
हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है ना, ये बहुत छोटा डिपार्टमेंट था। लोग तो थे पूरे मुल्क से, मगर था वो बहुत छोटा डिपार्टमेंट। हुआ ये कि 1985 में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को एक डिग्री अवार्डिंग स्टेटस मिला, और उसके नंबर्स जो थे ना स्टूडेंट्स के, वो बढ़ा दिए गए, हुकूमत ने बढ़ाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, अब नंबर्स बढ़ गए थे, कोटास बढ़ गए थे, और बेशुमार लड़कियां कॉलेज में उनको दाखला मिला। ये पहली मर्तबा ये हो रहा था कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जैसे कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, जिसमें ज़्यादातर मर्द होते थे, लड़के होते थे, मगर क्योंकि कंपटीशन से आते थे सारे, तो पता चला कि ख़वातीन चली आ रही हैं वहाँ पे, लड़कियाँ चली आ रही हैं, डिज़ाइनर्स लड़कियाँ आ रही हैं, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में लड़कियाँ आ रही हैं, होती थी लड़कियाँ पहले भी। खैर बहरहाल, एक तो ये बात, तो एकदम से नंबर्स बढ़ गए। दूसरी चीज़ जो हुई वो ये है कि जैसे कि हमने बात की कि ज़ियाउल हक का जो एक दौर है उसका जो एक असर हुआ कॉलेज में, मुझे अच्छी तरह से याद है जब यहाँ पे हैंगिंग हुई है लाहौर में, जो कि पब्लिक हैंगिंग थी, तो उसका जो एक उसकी जो एक नज़ारा था, किस तरीके से वो लोगों के काम में नुमाया हुआ, मतलब मुझे वो लोग याद हैं जिनके काम जो थे उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में उस तरह की चीज़ को दिखाया, और एकदम से एक पॉलिटिकल कंटेंट और एक जो है वो काम में नज़र आने लगा, जो कि शायद उससे पहले नहीं था। और जो ख़वातीन थीं जो कि मैं कह रही हूँ कि एक तरह से बढ़ते गए नंबर्स उनके, वो उनका काम जो है वो ज़्यादा पॉलिटिकल काम निकला, प्रोटेस्ट का काम निकला।
कौन सी, जरा नाम भी बता
दीजिए।
अच्छा,
मतलब सरीमा बैठी हुई है यहाँ पे, जाहिर है ये भी उसका हिस्सा थी, उसमें शामिल हैं। लाला रुख हैं जिनका और तरह का काम था, अब तो बहुत नुमाया है, मगर बहरहाल वो भी वहाँ पे उनका काम भी था। तलत दबीर का काम भी था, स्कल्प्टर थी वो भी एक तरह का, मेरा अपना काम था चादर चार दीवारी और इस तरह की इमेजरी जो थी वो,
मेहर अफरोज कराची में नाहिद रजा थी, फिर उसके बाद दुरिया काजी थी। सो वहाँ पे भी एक ये जो था ना जो ग्रुप था, और इस सब के ऊपर हम ये ना भूलें कि भी बैकग्राउंड में एक जो बहुत बड़ा नाम है वो ज़ुबैदा आगा का है, और वो ज़रा सबसे ज़रा अलग थलग रहती थी। 60s में उनकी बहुत अहमियत इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहली प्राइवेट गैलरी पिंडी में कायम की, और वो उनका रोल ये था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के आर्टिस्ट को जमा करना, उनका काम दिखाना। तो एक तरह से उन वो पहली मैं कहूँगी खातून आर्टिस्ट थी, हालांकि वो कहती थी मुझे उस तरह से मत याद करो, मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट थी, वो यंग आर्टिस्ट को पेट्रनाइज करती थी, और अब इतने साल बाद दोबारा से लोगों को एहसास हो रहा है कि भाई हमारी फ़नी तारीख में उनका जो मुकाम है उसको दोबारा से याद कर रखना चाहिए और उनको उनकी अपनी जगह देनी चाहिए। तो ख़वातीन का रोल जो है वो दो तरह का था, एक तो ये कि ज़्यादातर उस्ताद थी वो, तो नशो नुमा जो थी यंगर आर्टिस्ट की वो उनके हाथ में थी। दूसरा अगर गौर करें तो ज़्यादा ज़माने में तकरीबन सारी इंस्टीट्यूशन की हेड्स औरतें थी, जो कि बड़ी एक अजीबो गरीब चीज़ है कि भी इंडस वैली हो या बिल्कुल सिंध यूनिवर्सिटी में मुसरत मिर्ज़ा थी, पेशावर यूनिवर्सिटी में रुखसाना थी क्या या क्या उनका नाम था, सब जगह, और लाहौर में बासी आबिदी थी, एना मौलका अहमद थी। और ये मैं ये बता दूँ दुनिया में ये कहीं और नहीं था, मैंने बहुत तहकीक की है, कहीं मुस्लिम मुल्क तो छोड़ें वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं था, वेस्ट में भी जब उनको बताओ कि भी इतने अहम जो इदारे थे उनकी सरबराही जो है वो औरतों के हाथ में, तो हैरान थे कि भी वहाँ पे तो अमेरिका में तो प्रोफेसर बड़ी मुश्किल से बनती थी फाइन आर्ट की कोई खातून। सो दिस वाज अ वेरी अनयूजुअल सिचुएशन।
एक और बात भी बहुत अहम है वो ये कि जो मर्द आर्टिस्ट जो थे उनका ये था कि वो ये कहा जाता था कि भी कैलीग्राफी जो है वो मर्दों ने की, किसी खातून ने नहीं की, मतलब एक नुमाया आर्टिस्ट ने, और वो बहुत मकबूल थी।
अच्छा, उस जमाने में,
उस जमाने की बात कर रहे हैं, या फिर ये कि इस तरह की पेंटिंग्स जो कि जिनमें ये है कि भाई बड़ी बड़े कैनवासेस हैं उसके अंदर लैंडस्केप नुमा चीजें बनी हुई, ये सारे मर्दों का डोमेन है, खवातीन इसमें बिल्कुल नहीं थी। खवातीन जो थी जो काम वो बना रही थी उसमें और किस्म के मायने थे, और वो एक बहुत दिलचस्प एक हिस्ट्री है 10 साल की 80s की दिहाई की, जिसके अंदर इस तरह का काम बना जो कि सवाल उठाता था, जो कि आवाज़ एक और देता था। अब आप देखें और फिल्मों को आप देखें
जी,
आप और शोबों में भी जाएं और आप देखें कि ख्वातीन का क्या रोल था, तो उससे आपको नजर आता है।
सलीमा आपा, बात यह है कि आप लोग अब भी एक मुझे लगता है कि उस दुख से और उस तकलीफ से नहीं निकल सके जो 80 की दहाई में हमने इंफरादी तौर पर और कौमी तौर पर इज्तमाई तौर पर हमने बर्दाश्त की। मगर अगर हम 90 की दहाई में आए जब जमहूरियत एक तरह से, वैसे तो म्यूजिकल चेयर शुरू हो जाती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के माबेन, और जाहिर है कि उसकी डोरें भी कहीं से हिलती हैं, मगर 90 की दहाई में क्या सूरत हाल थी, और फिर आज तक आ जाए कि यानी 90 से लेके और फिर टर्न ऑफ द सेंचुरी है और फिर जो पिछले को 20-30 साल पोस्ट जियालग पीरियड
90 की दहाई में बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई। एक तो ये है कि बिल्कुल एक नया रुख लिया मुसव्वरी ने, और वो जिसको हम कंटेम्प्रेरी मिनिएचर कहते हैं।
अच्छा।
जो कि भाई छोटी तस्वीरें, लेकिन ऐसी तस्वीरें जिनमें एक तारीख का आंसर था, क्योंकि जो मिनिएचर जो कि मुग़ल वक्तों से और पोस्ट मुग़ल जो है उसे वाबस्ता था, तो उस काम करने का तरीका, खुद मटेरियल बनाना, वसली बनाना, ब्रश खुद बनाना वगैरह वगैरह, और एक बहुत ही मेहनत तलब काम उसका रुझान हुआ। लेकिन वो बहुत जल्द जो मुसव्वर, जो नौजवान मुसव्वर ये कर रहे थे, उनको इस बात का एहसास हुआ कि भाई कब तक हम बादशाहों की तस्वीरें बनाते रहेंगे, अब अपनी बात भी करें। तो उसमें फिर वो तरीक़ा कार तो पुराना था, लेकिन जो मौजू थे, मौजूआत जो थे, वो बिल्कुल आज के थे, और बहुत सियासी मौजूआत थे, उन पर गुफ्तगू हुई। तो मेरे ख्याल में ये कहते हैं ना, ग्रैंड लीप फॉरवर्ड हो गया एक हवाले से, कि लोगों के लिए दुनिया में ये एक नई चीज़ थी, लिहाजा पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी मैप के ऊपर नक्शे में डालने का, मेरे ख्याल में अगर सेहरा कोई है तो ये पाकिस्तान के मिनिएचर पेंटर्स के सर ये है,
शाज़िया सिकंदर, इमरान कुरैशी,
आयशा खालिद, ये सारे जो
हैं बेशुमार
बहुत
हर कॉन्टिनेंट पे बैठे हैं
जी।
तो ये
जगह जगह उनकी म्यूजियम में,
मुशर्रफ का दौर आता है,
अब मुशर्रफ का दौर आता है, तो और मुशर्रफ के बारे में भी सायरा वसीम ने बड़ी दिलचस्प तस्वीरें बनाई थी मिनिएचर में, जिनमें वो गले लगा रहे हैं रोनल्ड रीगन को, और तस्वीर का नाम बुश को, सॉरी, और तस्वीर का नाम है फ्रेंडशिप आफ्टर 9/11, तो वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ ये वाहिद चीज़ नहीं थी जो कि उभर रही थी, इसके साथ साथ ये एहसास था कि भी टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है, अब कंप्यूटर लोगों के हाथ में आ गया, डिजिटल काम कैसे किया जाए। सो दिस वॉज के भाई आप ये कहें, जिसका जिक्र शुरू में नाजिश ने कहा है कि आज हम देखते हैं तो हर तरह का काम हो रहा है। तो ये 90s और पोस्ट 90s
मतलब
का नतीजा है,
20वीं सदी में।
बिल्कुल भी।
एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाह रही
जी
हूँ, वो ये है कि एक तरफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ये जो मूवमेंट है मिनिएचर कंटेम्प्रेरी मॉडर्न मिनिएचर या जो भी आप उसको कहें, नियो मिनिएचर बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो एक तरफ तो वो हो रहा था और कराची में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हो रही थी, वो ये हो रही थी कि जो फोक आर्ट के ट्रेडिशंस थे जो कि खासतौर पर अर्बन फोक के, वो रिवाइवल जो है वो कराची में हुई और ये एक बहुत ही डायनामिक किस्म की चीज़ कराची में हुई। तो जब आप बात करते हैं ना अदीला सुलेमान की, मिसाल के तौर पे अदीला सुलेमान उन वर्कर्स के साथ काम करती हैं, या दुरिया काजी ने काम किया ट्रक ड्राइवर्स की जो पेंटिंग बनाते हैं ट्रक्स के ऊपर जो काम करते हैं उनके साथ, अदीला सुलेमान ने काम किया फोक आर्टिस्ट के साथ जो कि और किसी चीज़ कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। और जब ये जो मसला हुआ अदीला सुलेमान का फ्रे हॉल में कराची बेनाले के वक्त, जबकि ये एक बहुत पॉलिटिकल इशू था, नकीबुल्ला महसूद का कत्ल जो था वो पॉलिटिकल इशू था, उस पे काम किया था अदीला सुलेमान ने, तो जो इंतज़ामिया है उन्होंने आके ताले लगा दिए पूरी नुमाइश
जी, जी।
और वो कोई देख नहीं सका और तोड़ दी
जी।
उसने कब्रें बनाई थी 444 या जो भी हैं। और
अच्छा
ये हुआ।
ये तो हम आज तक इससे डील कर रहे हैं और ये हम करते चले जाएंगे, लेकिन अब चूंकि ज़रा सा थोड़ा सा वक्त की एक आपको पता है ज़रा एक पॉसिटी ऑफ टाइम रहती है हमेशा इस तरह के प्रोग्राम्स में, हालांकि मेरा जी बिल्कुल नहीं चाह रहा, मैं आप लोगों से एक एक ज़रा जाती हवाले से भी बात करना चाहता हूँ कि अगर सलीमा आपा से शुरू करें कि आप इस तरफ रागिब कैसे हुई, मतलब जाहिर है कि एक वो एक फ़नून लतीफ़ा से आपके वालिद आपकी वालिदा एलिस फैज़ मतलब ये, और फैज़ साहब का तो तस्करा हुआ ही, लेकिन आप फिर आर्ट की तरफ जो है रागिब कैसे हुई और क्या, और मुझे ये भी मालूम है कि फैज़ साहब जब दिल्ली में थे तब आपकी पैदाइश भी गालिबा नई दिल्ली की है और फिर आप लाहौर आईं और फिर आप बाहर गईं और जो भी सिलसिला रहा, तो क्या यानी
भाई देखें इस सवाल का तो मैं जवाब क्यों दूंगी, जब लोग कहते हैं कि भी आपके वालिद इतने बड़े शायर थे तो आप शेर नहीं कहती, तो बात यह है कि जिस घर में लफ्ज़ इतना भारी हो तो उसमें आपकी तो बोलती बंद हो जाती, तो फिर तो कोई आप
तो आपने कलम की जगह मुंह कलम उठा लिया
बिल्कुल, तो फिर आप नई राहें ढूंढते कि भी इजहार का कोई और तरीका होना चाहिए। और मैं चूंकि बहुत, अब तो शायद नहीं नज़र आता, लेकिन मैं बहुत अलग थलग और बहुत ही खामोश तबा होती थी और डरती रहती थी दुनिया से, तो वो फिर यही होता था कि मैं मेरे रंग मेरे ब्रश बस
तो। जी
हाँ, तो मेरा तो ये है कि मेरी वालदा जो हैं हयात हैं और मेरी वालदा एक आर्टिस्ट हैं, तो हमारे घर में जो था ना वो हमेशा पेंट और ब्रश और कैनवस और ये सारी चीज़ें होती थी और तस्वीर होती थी, और मेरी वालदा जो हैं पोर्ट्रेट्स बनाती थी, हमारे ऊपर बहुत जुल्म करती थी, बिठा के हमारी तस्वीरें बना रही होती थी, घंटों हमें बिठाती थी, हिलो मत। मगर ये था कि उसकी वजह से मैंने शुरू ज़िंदगी में अपनी जो पढ़ाई जो की तो उसमें तो मैं आर्ट की तरफ गई नहीं, मगर बाद में मैं एज अ मैच्योर स्टूडेंट नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आई, क्योंकि मुझे करना था अपना मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप तो एक ग्रेजुएट पुरानी ग्रेजुएट हैं तो हम आपको एडमिशन नहीं दे रहे। तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या तमाशा है, तो खैर फिर मैंने कहा फिर मैं कुछ और करती हूँ, तो मैंने कुछ अपने ड्राइंग शुरू की और ये किया वो किया, और फिर मैं गई खालिद इकबाल साहब और कॉलिन डेविड से मिलने, उन्होंने कहा आ जाओ यहाँ आ जाओ, तो मैं और शाहिद जलाल हम दो सीनियर लोग थे, शाहिद मरहूम
जी, जी।
मेरे दोस्त, हम दोनों ने एज मैच्योर स्टूडेंट्स नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। तो वो उस उम्र में जब आप आते हैं ना किसी एक शोबे की तरफ, तो फिर क्या होता है कि आप दिन और रात सोना जागना हर चीज़ जो है ना वो आपका वही होता है।
अच्छा, अब ये बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रही, मैं बस एक मुझे याद आ गया और वो मैंने कई दफ़ा एक आध बार जब लिखा है कुछ उसमें भी कोट किया है, अरविंद अडिगा एक इंडियन ओरिजिन के अदीब हैं और उनकी एक किताब है द वाइट टाइगर, उसमें उसमें से एक यानी मुझे याद है, एक बहुत ही खूबसूरत बात उसमें लिखी हुई है कि वो कोई एक उनका कोई भांजा भतीजा गांव से, ये इनका मेन प्रोटैगनिस्ट एक ड्राइवर है जो
हाँ
जो शहर में दिल्ली में गाड़ी चला रहा है, तो वो उस बच्चे को बिठा के फोर्ट पुराना किला दिखाने ले जाते हैं, और वो उनसे, और फिर उसमें एक एक जुमला है, और वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है लेकिन वो बहुत दिलचस्प जुमला है कि टू हेल विद द नक्सल्स, नक्सलवाड़ियों के बारे में, टू
हाँ
हेल विद द नक्सल्स हु स्मगल मिसाइल्स फ्रॉम चाइना इफ एवरी पोअर बॉय इन इंडिया, अब ज़ाहिर है वहां चूंकि वो लड़का है तो बॉय, वरना एवरी पोअर चाइल्ड,
हाँ
इफ एवरी पोअर चाइल्ड इन इंडिया लर्न्स हाउ टू पेंट दैट विल बी द एंड ऑफ द रिच इन इंडिया. तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का अगर हर बच्चा तस्वीर बनाने लगे, हर बच्चा और बच्ची जाहिर है, और एक उसको इजहार की और अपने जज्बात को आगे बढ़ाने की और यानी उसके इजहार करने की और अपने ख्यालात को बयान करने की एक मौका मिले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हम एक बहुत मुख्तलिफ समाज में ज़िंदा रहेंगे, एक मुख्तलिफ समाज बना पाने में कामयाब होंगे.
ये
बहुत बहुत
पब्लिक
शुक्रिया.
इंस्टीट्यूशंस में तो ये ज़रूर हुआ है, ये
पब्लिक
हुआ है
इंस्टीट्यूशन में,
पब्लिक
पब्लिक
इंस्टीट्यूशंस
इंस्टीट्यूशंस
में,
में ये
जो
हुआ है.
आर्ट के इंस्टीट्यूशंस
हाँ,
हैं इसमें ये ज़रूर हुआ है,
कि इससे एक
क्योंकि
बहुत एक तवानाई और एक एम्पावरमेंट बिल्कुल
बिल्कुल
होती. बहुत बहुत शुक्रिया सलीमा आपा, प्रोफेसर सलीमा हाशमी, प्रोफेसर नाज़िश अताउल्ला, आपने वक्त निकाला और पाकिस्तान में एक जो पिछले 75 साल में फ़न की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में जो होता रहा है, फ़न मुसव्वरी की ख़ास तौर पर या संग तराशी की भी और कैलीग्राफी की भी, उस पर गुफ्तगू की. बहुत बहुत शुक्रिया.
पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल, इस मौके पर वीओए उर्दू आपके लिए ऐसी कहानियाँ और गुफ्तगू ला रहा है जिनमें बात होगी पाकिस्तान के सियासी, सकाफती और माशरती तनावों के हर पहलू पर. हम पेश करेंगे मुख्तलिफ नुक्ते नजर और फिक्र अंगेज ख्यालात. इस तारीखी मौके पर वीओए उर्दू की नशरियात सुनते रहिए. इस खसूसी पॉडकास्ट की अगली किस्त में हम बात करेंगे पाकिस्तान में खेलों की तारीख पर.